प्यारी सात संगत प्यार से बोलिए सात संगत अभी तक आपने भक्तों की भावना श्रवण के भगत का विश्वास यकीन अपने सतगुरु के ऊपर होता है। जिसका पूर्ण विश्वास हो उसका कोई भी काम फिर रुकता नहीं। सतगुरु एक निगाह ही भर कर देख ले तो कहते हैं कि सुखों के अंबार लग जाते हैं। सतगुरु हमारे अंदर की भी जानता है, कट कट के अंतर की जानत, पले भरे के पीर पहचानत, इसको सब पता होता है। फर्क लगता है तो हमें लग जाता है। हम एक दफा बात करते हैं फिर दूसरी दफा दोहराते हैं, तीसरी दफा दोहराते हैं कि शायद सतगुरु को मेरी बात की समझ नहीं आई, क्योंकि इन्होंने उत्तर नहीं दिया। सतगुरु तो अंतर की जानता है कि आपके अंदर क्या है, रोम रोम की जानता होता। आगे भी मैं एक दफा आपको ये बात सुनाई। शहनशाह बाबा अवतार सिंह का समा था, पहाड़गंज में सत्संग हो रहा था, तो एक ने महापुरुष ने कोई दिल में 2, 4, 5, 6 सवाल लिए हुए, कहने लगा कि आज मैं शहनशाह के आने से पहले ही पहुंच जाऊंगा, जब वो स्टेज पे बैठेंगे मैं ये भी बात रखूंगा, ये भी रखूंगा, वो भी रखूंगा। जब वो आया तो कुछ लेट हो गया, विचार शुरू हो गए, पीछे बैठ गया। बैठ गया तो जितने भी उसके मन में सवाल थे शहनशाह उसी के उत्तर देते चले गए। जो वो बातें दिल में लेकर आया उन्हीं बातों का ही जवाब मिलता चला गया। जब भोग पड़ा शहनशाह के पास, नमस्कार की जाकर स्टेज पे, कहने लगे महाराज आप तो बड़े अंतर्जामी हैं। कहते हैं तुझे आज पता चला, सतगुरु तो अंतर्जामी होता है, ये तो हर एक की भावना को जानता है कि कैसी कैसी भावना मेरे पास कोई लेकर आया है। तभी कहा है कि जय भावनी ते फल, जैसी जैसी भावना होती है ऐसा फल मिल जाता है। तो आओ सात संगत, क्योंकि सतगुरु की महिमा तो अगर ये जवा के मैं गा सकूं, मैं कुछ कह सकूं, ये तो सात संग कभी एक जन्म में कितने जन्म भी इंसान लेता चला जाए तो नहीं गाई जा सकती, क्योंकि इसका इतना विशाल हृदय भी होता है और इसकी विशालता भी होती है। पता नहीं कितनी विशालता इसकी है जिसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आओ सात संगत, संत महात्मा तो हर वक्त अरदास ही करते रहते हैं, क्योंकि भगत की अरदास ही बनती है। क्योंकि कभी भी हुक्म वाली बात नहीं होती, हुक्म तो सतगुरु का होता है, और जैसा जैसा हुक्म होता है ऐसा ऐसा भगत मान कर चलता रहता है, तो फिर तो भगत की भावना और भक्ति पूर्ण होती है। काम भी क्यों ऐसे हुआ क्यों नहीं हुआ, ये तो एक तरफ भी बातें भगत रख देता है। गुर किया सो कार कमाओ, गुर की करनी का एताओ, गुरसिख जो है गुरु के हुक्म को बजा लाता है, क्योंकि बचपन से सुनते आए कि अगर कह दिया दिन है तो दिन मान लिया, चाहे वो आधी रात्रि थी। अगर दिन को रात्रि भी कह दे तो फिर भी गुरसिख कहता है कि जो मेरे सतगुरु ने कहा है वो ठीक है, क्योंकि हमारा दायरा छोटा है, हम छोटी हमारी सोच है। सतगुरु की सोच जो होती है बड़ी होती है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। तो और सत्संगत इस शब्द में भी इसी तरह बताया है कैसे
गुरसिख है वो पूरे गुरु तो अंसंग रब नू जाने जो।
कहते हैं कि गुरसिख वही पूर्ण होता है जो पूर्ण सतगुरु से इस अंग संग प्रभु को जान लेता है। जो साथ से हमारे अंग संग है, पत्ते पत्ते में है, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, जिसको अनेकों नामों से हम पुकारते हैं। कहते हैं कि पूरे सतगुरु की निशानी यही होती है कि ये अंग संग प्रभु के इस रमे राम के दीदार करा देता है, और पूर्ण भगत भी वही होता है जो दीदार कर लेता है, जो इसकी जानकारी कर लेता है। तो कहते हैं कि पूरे सतगुरु जो होता है ये अंग संग इस प्रभु को हाजर ना हाजर दिखा देता है, यही इसकी विशेषता होती है। गुरु तो साथ अनेकों मिल जाते हैं संसार में, जो हमें पढ़ाई करता कराता है वो भी गुरु, जो कोई काम सिखाता है वो भी गुरु, जो सत्संगत और कोई हमें केवल रास्ता ही दिखा दे तो हम कहते हैं तू तो आप ही परमात्मा रब मेरे सामने आकर मुझे ये रास्ता दिखा दिया, उसको भी ये दर्जा दे देते हैं। पर जो सत से मिलाने वाला उसको पूर्ण सतगुरु कहते हैं, क्योंकि सत केवल एक निराकार परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गार जिसको अनेकों नामों से पुकारते हैं केवल यही सत है, और जो कुछ हम देखते हैं ये असत है, इसमें सत्ता नहीं है, ये तो असत्य है, ये कभी रहने वाला नहीं। तो इसीलिए कहा है कि जो पूर्ण सतगुरु से ये पूर्ण ज्ञान ले लेता है वही पूर्ण गुरसिख होता है।
नीवा होके होमे छटे सच्चा राह पछाड़े जो।
कहते हैं कि नीवा होकर होमे छोड़ देता है, फिर इस सच की पहचान कर लेता है, ये सत का रास्ता अपना लेता है, ये कहता है कि मैंने दुनिया देखी है, ये तो मतलब की होती है, मैंने ठोक बजा कर दुनिया देखी है। पर केवल ये सत को पहचान कराने वाला केवल यही सत होता है। पहचान जिसको भी हो जाती है वही सत्संग कहता है कि नाल नारायण मेरे जमदूत नावत नेरे। कहते हैं कि ये नाल नारायण मेरे है, जिसके साथ साथ कोई दो चार जा रहे हों रास्ते में उनको भय नहीं आता, चाहे रात्रि का समा हो, अकेला जाता है तो उसको भय आ जाता है, वो इधर देखता है उधर देखता है, कहता है कोई पीछे से ना आ जाए, कोई दाएं से ना आ जाए, कोई बाएं से ना आ जाए, मेरे पे वार ना कर जाए, तो मैं अकेला जा रहा हूँ। पर साथ संगत जिसके साथ दो चार होते हैं उसको ऐसा भय नहीं होता। इसी तरह ही कहते हैं कि जब ये नारायण मेरे साथ है, ये निराकार मेरे साथ है, तो फिर मुझे भय नहीं है, क्योंकि भगत जो होता है भय से रहत होता है, तभी दुनिया को ये सत की आवाज़ देता है। क्योंकि भय रखता है तो अपने केवल इस सतगुरु का भय रखता है, संसार का भय इसके पास सत्संगत नहीं आता। ये कहता है कि मैं संसार से साथ से इसमें शक नहीं, संसार में विचरता है, संसार के साथ काम करता है, उठता बैठता है, पर साथ से इसका अकीदा विश्वास अपने गुरु के ऊपर होता है। वो तो कहता है कि ये सब तेरी माया है, ये तेरा पसारा है। शासन जैसे मदारी भी, आपने मदारी का खेल देखा होगा कि वो शासन क्या करता है, एक थैला सा खोल कर बैठ जाता है, उसे कभी क्या निकालता है कभी क्या निकालता है, बच्चे स्कूल जाना भूल जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। काम करने वाले काम पर जाना भूल जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। वो ऐसे ही निकालता चला जाता है, आखिर में क्या करता है, सब थैले में वो डाल कर चल पड़ता है। इसी तरह ये पसारा भाई इसी का ही पसरा होता है। ये खिलाड़ी जैसे कहा है कि ये जो जग है, ये संसार है, ये कहते हैं कि ये तमाशा है, पर मैं देखने आया हूँ इस तमाशे को। मैं देख रहा हूँ कि कैसे ये संसार चल रहा है। तो आओ साध संगत, ये संत महात्मा जो होते हैं, ये जुगो जुगो से इनकी एक ही आवाज़ होती है। जैसे हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, चाहे गीता में पढ़ लें, रामायण में पढ़ लें, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ लें, कुरान में पढ़ लें, या अभी अवतार वाणी में पढ़ लें, साथ से कोई भी आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। आपको साथ संगत कोई भी तफरका नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कहा है कि ये जब भी बोलते हैं, ये सारे संसार के लिए बोलते हैं, दो चार इंसानों के लिए नहीं इनकी आवाज़ होती। ये लिखत भी जो लिख कर जाते हैं, ये भी सारे संसार और आने वाले समय के लिए भी होती है, कि शायद इन बातों को पढ़कर कोई फ़ायदा उठा ले। पर सत्संग जो फ़ायदा उठा लेते हैं, वही भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं। जो कहते हैं कि ये तो कहते ही रहते हैं, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, सत्संग फिर को फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसीलिए सत्संग तो महात्मा की आवाज़ जो होती है, ना किसी जाति के लिए होती है, ना मज़हब के लिए होती है, हर इंसान के लिए। हर इंसान सत्संग, सारे संसार में ही हर इंसान आ जाता है। तो ये इंसान चाहे वो कोई किसी जाति से तलक रखने वाला हो, चाहे सत्संग गरीबी में हो, अमीरी में हो, पुण्य हो, पापी हो, क्योंकि ये उद्धार करने आता है, ये पापियों के लिए ही आता है सत्संग। जैसे ईसा मसीह जी के पास दो इंसान आए, एक तो सत्संग रोता कुरलाता आया, कहने लगा कि मैंने जितने भी काम किए हैं, मैंने इसमें कोई कुताही नहीं की, मैंने सब ठीक किए हैं, मैंने इसमें कोई गलती नहीं की। एक आया, वो भी इसी तरह ही कहने लगा, मैंने कोई भला काम नहीं किया, मेरे से कोई अच्छाई नहीं हुई, मैं जब से संसार में आया, दुनिया में आया, मैं किसी को सुख नहीं दे सका। तो साध संगत जब वो दोनों लौटे, तो ईसा मसीह जी अपने शिष्यों को कहने लगे कि जो कहता है कि मैंने कोई भला काम नहीं किया, मैं किसी को सुख नहीं दिया, ये तो ज़रूर बख्शा जाएगा। जो कहता है कि मैंने काम सब अच्छे किए हैं, मैं सबको सुख दिया है, तो इसमें मुझे शक नज़र आता है कि ये नहीं बख्शा जा सकता। तो आओ सत्संग, ये महापुरुषों की बुझारतें होती हैं, पर ये बुझारतें भी ब्रह्म ज्ञानी समझ सकते हैं, आम संसार को नहीं समझ आती। जैसे हमारे आगे भी कोई बुझारत डाले, तो सत्संग हम जितने बैठे होते हैं उतने नहीं समझ पाते, कोई कोई समझ पाता है, उस बुझारत का उत्तर देता है। तो आओ सत्संग, इसी तरह ही ये महात्मा की आवाज़ जुगो जुग से चली आती है।
गुरसिख वो है जो गुरु दसे उस उत्ते इतबार करे।
कहते हैं कि गुरसिख की निशानी क्या होती है, जो सतगुरु बताता है उसके ऊपर इतबार करता है, वो अपने इतबार को डावा डोल नहीं करता। इसीलिए साध संगत जैसे सिमरन में कहते हैं कि मेरा डोले ना विश्वास, क्योंकि दुनिया में डुलाए मान करने वाले बड़े मिल जाते हैं। पहले भी ये, अभी आपने ये सिमरन में कहते, पहले भी साध संगत ये भगत कहते आए, डोलन ते राखो प्रभु जन नानक देकर रात, के दातार मुझे डुलाए मान से बचाए रखना, अपना हाथ मेरे सिर पे रखना। तो और सत्संग कहते हैं कि पूरा सतगुरु जो होता है, ये सत्संग अगर इसके साथ जुड़े रहे तो डोलने से बचे रहेंगे, अगर ज़रा भी दुनिया की तरफ मुंह हुआ तो फिर सत्संग डुलायमान होने का डर पैदा हो जाता है। तो और सत्संग इधर कहा है कि जो पूरे सतगुरु को मानते हैं,
भला मने मिठा बोले गुरसिखा
प्यार करें, कहते हैं कि वो फिर पाना मनते हैं, मीठा बोलते हैं और गुरसिखों के साथ भी प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि घर में भी जब कोई होता है, जैसे सत्संग घर में बहू भी आ जाती है तो वो भी सत्संगत है, तो ऐसी बात कि एक तेरी जिंद बदले में सारे टबर दी गोली। गोली कहते हैं नौकरानी को, कहते हैं कि कहती पति को कि एक तेरी जिंद बदले मैं सारे टबर दी गोली। इसी तरह सत्संग इस सतगुरु के पीछे हमने भक्तों के साथ प्यार करना है। सतगुरु हमें समय समय पे आदेश उपदेश देते हैं कि अगर भक्तों को खुश किया तो समझो मैं भी खुश हो गया, अगर भगत कोई नाराज है तो मैं फिर उस पर खुश नहीं होता। क्योंकि सतगुरु तो ऐसे ही शहनशाह ने एक दफ़ा ये भी ऐसे संगत में ही सवाल किया कि सबके सबसे बड़ा सज्जन आपका कौन है, तो सत्संग कोई कहने लगा कि जो आप सबसे सज्जन तो आप ही हैं। कहते हैं मैं तो सबसे सबका ही सज्जन हूँ, मैं तो किसी का भी दुश्मन नहीं, ना कोई मेरे दुश्मन है, आप बताओ कि आपका कौन सा सज्जन सबसे बड़ा है। तो कोई क्या जवाब दे, किसी से सत्संग उत्तर ना सही मिला, तो फिर कहने लगे महाराज आप ही इस सवाल का जवाब दें। तो शहनशाह कहने लगे जो सतगुरु के साथ और साथ संगत के साथ जोड़ता है जो वही सबसे बड़ा सज्जन होता है, जो दूर ले जाता है वो दुश्मन होता है। सतगुरु से दूर ले जाए, साथ संगत से दूर ले जाए, तो जो नज़दीक जुड़े होते हैं उनको भी दूर लेकर माया के साथ जोड़ दें वही दुश्मन होते हैं। तो आओ साथ संगत, ये तो समय समय पे हमें ऐसे ही समझाते आ रहे हैं। सत्संग एक युग की बात नहीं, दो की नहीं, तीन की नहीं, सत्संग द्वापर भी आया, त्रेता भी आया, सतयुग भी आया, कलयुग भी आया, सत्संग सारे युगों में ही ये अपनी आवाज देते आए और समझाते चले आ रहे हैं।
पल पल उत्ते गुरु है राखा जे सिख इसदा ध्यान करे।
कहते हैं कि पल पल ये राखा बन जाता है, पर साथ एक बात कह दी, जो इसका ध्यान दे, ध्यान इधर उधर दे। अभी भी आपने कमल जी से भी श्रवण किया कि जिसका अकीदा अपने गुरु के ऊपर है, ध्यान जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि उसका तो पल पल में राखा बन जाता है। ये तो फिर साथ से उसकी संभाल करता है, अपने गुरसिख की संभाल करता है, राखा बन जाता है। अगर साथ से अपना विश्वास ही नहीं पूर्ण तो फिर हम कहते हैं डुलायमान होते हैं, जिस जहाँ कहीं किसी ने बताया उधर ही चल पड़े, उधर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उधर जाएगा तेरा काम बन जाएगा। जब अपना मन डावा डोलो, अपने गुरु पे ऊपर विश्वास ही ना हो, फिर हम कह देते हैं जी हम इतने समय के ज्ञानवान लगे हुए हैं, हम इतनी देर होगी ज्ञान लिया हुआ है, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, फिर पता नहीं हमारे काम क्यों नहीं होते। पर सत्संग वो भूल जाते हैं कि जैसे सतगुरु ने कहा ऐसे हमारा विश्वास अपने गुरु के ऊपर पूरा है। जब गुरु ने कह दिया अच्छा तेरा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर विश्वास करके तेरा काम पूर्ण हो जाएगा। तो अगर गुरु ने हंस कर भी साथ संगत ऐसे हंस ही पड़े तो फिर भी इतना विश्वास पूर्ण हो कि बस सतगुरु हंस पड़े हैं मेरा काम हो जाएगा। तो आओ साथ से इतने विश्वास पक्के हो कि कभी भी डुलायमान ना हो।
कहे अवतार एहो जिहा गुरसिख लखां दा कल्याण करे।
कहते हैं फिर ऐसा गुरसिख जो होता है वो लाखों का कल्याण कर देता है, एक दो चार का नहीं, लाखों का कल्याण कर देता है। अभी आप देखते हैं कि सतगुरु तो सब जगह पहुंच नहीं सकते शरीर कर कर, पर आप जैसे भगत ही कहाँ ना कहाँ पहुँच कर तो सत्संग ये सत की आवाज़ दे रहे हैं, इस ज्ञान को बांट रहे हैं। तो सत्संगत ये सतगुरु का ही प्रताप है, नहीं तो सत्संग हमें कौन पूछता था। जैसे आप गीत भी बोलते हैं कि तेरी बंदगी से पहले हमें कौन पूछता था, कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो सत्संग जैसे आज भी संसार में देखते हैं कि कौन किसी को पूछता है, तो आओ सत्संग सतगुरु की बदौलत से ही हमारी पूछ भी होती है। हमें सत्संगत सब ऐसे देख कर जैसे पता नहीं पहली दफ़ा ही दिन को मिले हैं, 10 दफ़ा भी मिले तो फिर भी ऐसे लगता है कि पता नहीं पहली दफ़ा ही मिले हैं। तो कैसे मुस्कुरा कर मिलन होता है, नहीं तो सासे ऐसे जमाने में आज कौन मुस्कुरा सकता है, किसी के मुंह पे भी हंसी नहीं होती। सब ऐसे घूम रहे होते हैं, जाते कहीं हैं, ध्यान कहीं होता है, घूम कहीं रहे होते हैं, ध्यान कहीं जुड़ा होता है, तो परेशानी ही परेशानी। बच्चे से लेकर बड़े तक सासन किसी से भी बात कर कर पूछो, बस मैं डिप्रेशन हुआ हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी ये बात कह देते हैं। इसीलिए सत्संग संत महात्मा दुनिया में आकर ये परेशानियाँ ही तो दूर करते हैं। जो जो भी इनकी बात मानता चला जाता है उसकी परेशानियाँ दूर होती चली जाती हैं। जहाँ कहीं अपने मन की होशियारी आगे ले आते हैं, चलाकी ले आते हैं, चतुराई ले आते हैं, फिर तो सत्संग वही हिसाब रहता है। क्योंकि वो तो आप जानते हैं कि अपना ही मन ना साबित हो तो फिर सतगुरु क्या करे। तो आओ सत्संग इधर इसी तरह बताया है कैसे
कहे अवतार एहो जे गुरसिख लखां दा कल्याण
कर। कहते हैं ऐसा गुरसिख जो होता है लाखों का कल्याण कर देता है, एक दो चार का नहीं लाखों का। जैसे अभी सत्संग तभी आपका समागम निकला, आपने देखा कि लाखों लाखों में संत आपके पास इधर आए, दूर दूर से देशों दूर देशों से भी चल कर आए। तो कैसे सत्संग लाखों लाखों की गिनती पे ये सत्संग हुआ, तो करने वाले भी हजारों लाखों हैं और जिनका उद्धार हुआ वो भी लाखों हजारों हैं। तो और सत्संग ये दातार की कृपा है, तभी सत्संग हम मिलकर बैठे हुए हैं। नहीं इस समय में कोई भी मिलकर नहीं बैठ सकता। आप संसार में देखो हर किसी फील्ड में कोई भी मिल, जहाँ देखो झगड़ा, जहाँ देखो तू तू, जहाँ देखो मैं, यही चल रहा है। पर ये सतगुरु ने अपार कृपा की है कि हमें मिलकर बैठना सिखा दिया है, एक दूसरे से प्यार करना सिखा दिया है, आदर सिखा दिया है। और जैसे सत्संग हम किसी से आदर किसी का करते हैं तो वो सत्संग अपना ही आदर होता है। वो तो जैसे है ऐसे ही है। कोई किसी को आदर देना तो वो कोई दो गिट्ठे जमीन से ऊंचा नहीं हो जाता, जहाँ नजादरी करनी कोई जमीन से नीचे नहीं चला जाता, रहता जमीन के ऊपर ही है। पर ये अपने लिए बीज डालते हैं, किसी का आदर करते हैं तो हमारा होता है, सत्कार करते हैं तो हमारा होता है, सेवा करते हैं तो हमारी होती है, किसी को खुशी देते हैं तो हम खुश रहते हैं, किसी को उल्टी सीधी बात कह दें तो फिर सत्संग वो अपना हृदय जो है वो ऐसे ही जला होता है, तभी उल्टी सीधी बात दूसरे को कह सकते हैं। अगर अपना हृदय खुश हो तो उसको भी खुशी की बात कह सकते हैं। तो और सत्संग ये ऐसी बातें होती हैं जो छोटी छोटी चाहे बातें होती हैं पर जीवन में सत्संग ये बड़ा बड़ा काम कर जाती हैं। तो और सत्संग यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, तो दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। सत्संग ये केवल पढ़ने वाली और सुनने वाली बातें नहीं होती, ये जन्म जन्म की मैल जो है ये कट देता है। पर जैसे सत्संग बच्चे को नुला थला कर माँ बड़े सुंदर कपड़े पहनकर सत्संग बाहर निकालती है तो एकदम जमीन पे लेटनियाँ शुरू कर देता है। वो लेटता है तो सत्संग माँ कहती है भाई मैंने तो तुझे कितना साफ सुथरा बनाकर सुंदर कपड़े पहनाकर बाहर भेजा, तू फिर जमीन पे देख कपड़े के क्या हाल कर दिया। इसी तरह कहा है कि गुरु बेचारा क्या करे जब सिखन में चूक, अंधे एक ना लागी बांस बजाई फूक। जैसे माँ कहती है फिर मैं क्या करूँ, चल ठीक है लेट ले मिट्टी में। तो आओ सत्संग इसी तरह कहा है कि गुरु बेचारा क्या करे, गुरु को भी कहने वालों ने बेचारा कह दिया। पर जब सिखों में चूक, जब सिखों में ही सत्संग चूक होती है तो कहते हैं अंधे एक ना लागे ही जहाँ बांस बजाई फूक। जैसे देखते हैं कि बांस के अंदर गांठ होती है, चाहे हम एक दूसरी तरफ से कितनी फूके लगाते रहें वो आर पार फूक नहीं जाती क्योंकि गांठ होती है। इसी तरह कहते हैं कि ऐसे दल से दिमाग हो जाते हैं कि कोई भी सत्संग बात इस दिमाग के अंदर जाती नहीं। तो आओ सत्संग यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार तू दिमाग भी तूने देना है, विश्वास भी तूने देना है, यकीन भी तूने देना है, और सत्संग भक्ति भी तूने ही करानी है, सत्संग बोल भी तूने बुलाने हैं। जैसे कहा कि आप बोल ना जाने ही सब बोलना हुक्म आओ जियो, अपने आप तो साथ संगत इंसान कह के मैं एक बात भी कह पाऊँ वो साथ से नहीं कह पा सकता। यही कलम में शक्ति देता है तो लिख पाते हैं, यही कानों में शक्ति देता है तो सुन पाते हैं, यही शरीर में शक्ति देता है तो भाग भाग के सत्संग में आ जाते हैं। तो आओ साथ से यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, इसी तरह संतों का संग दे रखना, ताकि दिन दुगनी चार चुगनी ये होती रहे और भक्ति में डूबे हुए ये अपने जीवन को व्यतीत करें। सत्संग जी धन्यवाद।